ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है पारदर्शी जीवन। पारदर्शी जीवन अर्थात ट्रांसपेरेंट लाइफ, क्रिस्टल क्लियर लाइफ। मूल वतन से जब हम आत्माएं इस धरा पर आती है सतयुग में, तब हम पूरी तरह से पारदर्शी होते अर्थात संपूर्ण पवित्र होते हैं। हमारा मन, वचन, कर्म संपूर्ण शुद्ध होता है। हमारा व्यवहार भी एकदम शुद्ध होता है। परंतु जब हम द्वापर में आते हैं तो हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता होती है, और विकारों की प्रवेशता होने के कारण उसका आवरण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नीचे उतरते जाते उतने उतने विकार ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो वो आवरण और भी घना होता जाता है। तो जैसे समुन्द्र में मोती होते हैं, लेकिन वो मोती होते हैं सीप के अंदर, तो सीप का उसके ऊपर आवरण होता है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर बहुत से हीरे, सोना, चांदी सब कुछ होता है, परंतु उसके ऊपर मिट्टी का, पत्थरों का आवरण होता है। बहुत पत्थर, मिट्टी आदि सब कुछ निकालने के बाद वो सब हमको प्राप्त होता है, वो भी रॉ स्टेज में। उसे भी बाद में साफ करना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा में पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति सब कुछ है, परंतु उसके ऊपर अभी विकारों का आवरण चढ़ जाता है। तो विकारों का आवरण चढ़ जाने के कारण आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो बाहर नहीं आ पाती, और आत्मा दुखी होती रहती है। तो पारदर्शी जीवन अर्थात हम जो है, जैसे है, वो बाहर रहे, अंदर एक बाहर एक अलग, ऐसा नहीं, अंदर बाहर एकदम साफ रहना। जैसा हमारा वास्तविक स्वरूप है वैसे ही बाहर रहना, क्योंकि वास्तविक स्वरूप हम अपना भूल जाते हैं, इसलिए बाहर के प्रभाव से दुखी हो जाते हैं। एक गीत है, जब भी जी चाहे एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मतलब जब जो मतलब होता है उसी प्रकार आत्मा चलती रहती है। तो ये प्रभाव ऐसे अपने मतलब के अनुसार चलने के कारण वो अपने आप को भूल जाती है और दुखी होती रहती है। तो ऐसे ना हो कि हम अपने जो अंदर है बाहर है वही साफ रीति से रहना चाहिए। तो जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे या दादी जी थी, उनका जीवन एकदम पारदर्शी था, अर्थात उनके सामने हर बात स्पष्ट होती थी। मामा बाबा के सामने जब भी कोई जाता था, चाहे कोई भी विचार से जाए, चाहे किसी भी भावना से जाए, उनके सामने वो एकदम स्पष्ट हो जाता था। बाबा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा स्वयं क्लियर था, पारदर्शी था, तो बाबा के सामने हर बात स्पष्ट हो जाती थी। ऐसे ही अगर हम उनके सामने जाते थे, जो भी उनके सामने जाता था उनके सानिध्य में आता था, उनके व्यवहार को देखिए, उनके आचरण को देखिए, उनके प्रेम को पाकर अपनी कमजोरी, कमी स्वयं ही महसूस करता था, और उसमें उनको कमजोरी का पता चलने के कारण वो फिर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ते थे। क्योंकि उनका जीवन पारदर्शी था, तो जैसे उनका जीवन एक दर्पण था, दर्पण में कोई भी चीज जो होती है वो एकदम क्लियर दिखाई देती, जैसा है वैसा है। लेकिन हमारा भी दर्पण जो है वो अभी खराब हो चुका है, उस पर धूल लगी है। तो जैसे एक उदाहरण है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उनका बहुत सुंदर घर होता है कांच का, तो लेकिन उनके कांच के ऊपर बहुत धूल चढ़ी होती है। तो वो वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो सामने वाले के जो कपड़े हैं वो हमेशा गंदे ही होते हैं, वो कभी भी साफ नहीं रहते हैं। तो एक दिन उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि जरा तुम अपने आईने की तो धूल साफ करो। तो जिस दिन वो अपने आईने की धूल, अपने कांच की खिड़कियों के कांच की जो धूल होती है वो साफ करती है, तो उसको वहाँ कपड़े वो साफ दिखाई देते हैं। अर्थात हमारे अंदर जो मैल छिपी होती है उसके कारण हम दूसरों को भी खराब समझते हैं। वो अच्छा भी होता है तो भी हम उसको कई बार खराब समझ लेते हैं, क्योंकि हम ही वैसे हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। बाबा कहता है ना, जैसे कि हरे रंग का चश्मा लगाओ तो हरा दिखता है, लाल रंग का लगाओ तो लाल दिखाई देता है। तो ऐसे ही जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारी वो दृष्टि बन जाती है, और फिर हम दूसरों के दोष देखना शुरू करते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी का उदाहरण है बाहर की दुनिया में, कि महात्मा गांधी जी, उनका सत्यता, सत्य और अहिंसा दो उनके शस्त्र थे, उसी के आधार पे वो चलते थे। तो सत्यता उनकी इतनी प्रसिद्ध थी, जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे तो जो प्लेंटिफ होते थे, जो पार्टीज होती, डिपेंडेंट होते थे, जो भी पार्टीज होती, उनको पता था कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी अगर केस लड़ रहे हैं तो वो सत्य ही है। जजेस को भी वो पता होता था, तो उनको उस कारण उसका बहुत बेनिफिट मिलता था, समाज में उनकी उसके लिए बहुत प्रतिष्ठा होती थी। परंतु आज कोई बहुत ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, वो थोड़ा अपना पारदर्शी जीवन जीते हैं, हालांकि सबके अंदर विकार तो है ही, फिर भी कई लोग होते हैं जो अच्छे सत्यता के आधार पर या अच्छे गुणों के आधार पर चलते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने के हिसाब से, या स्वयं को उतना शुद्ध बना के चलते कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं, अपने कैरेक्टर को इतना वो बिल्टअप करते हैं, तो ऐसे वो चलते हैं। लेकिन देखा गया है कि पारदर्शी जीवन जीने में सबको दिक्कत होती है। क्यों क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि सबसे पहले होता है सेंस ऑफ रिजेक्शन, कि अगर हम जैसे हैं वैसे अगर लोगों के सामने आए, हमारी कमी कमजोरी उनके सामने आए, तो हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे। सबसे पहली बात, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है और सेंस ऑफ रिजेक्शन है। अगर हम अपनों के बीच में हैं तो हमें वो रिजेक्शन का डर नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ अपनापन होता है। जैसे परिवार में हमारे साथ कितनी गलतियाँ होती है, कुछ भी होता है, या समझ लो कुछ गाना गाना है, कुछ भी बोलना है, तो हम आराम से बोलते हैं, क्योंकि वहाँ अपनापन होता है, वहाँ पता है कि हमें यहाँ पे कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, हमें कुछ गलती के लिए कुछ कहेगा नहीं या समझाएगा प्यार से, तो वहाँ हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, तो सेंस ऑफ रिजेक्शन नहीं होता है। लेकिन बाहर अपनापन नहीं है तो रिजेक्शन का डर। दूसरा फियर, दूसरा एक डर होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, फिर लोग मुझे क्या कहेंगे, वो एक डर होता है। तीसरी बात है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण भी लोगों के सामने वो सत्य रहने से डरते हैं। लेकिन ये बात पता नहीं होती कि जितना जितना हम अपने आप को छिपाएंगे, जितना जितना अपने आप को दूसरों से बचाएंगे, अपनी गलतियों को बचाएंगे, उतना ही हम और उस गलतियों में ज़्यादा, वो गलतियाँ हमारी दृढ़ होती जाएगी, उसका हमारे पक्का होता जाएगा और उससे हम मुक्त नहीं होना चाहते। हालांकि चाहते कोई भी नहीं कि हमारे अंदर गलतियाँ हो, परंतु वो पाप हो, कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन वो आत्माएं संस्कारोंवश परिस्थितिवश करती रहती है, तो उस कारण उनके अंदर वो बहुत सारे वो विकार जो है, वो या जो उनकी कमी कमजोरी वो और भी दृढ़ होती जाती है। वो और मनुष्य समझता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लोगों के सामने मैं एकदम अच्छा नजर आऊँ, लोग मुझे कुछ भी कहे नहीं, मुझे अच्छा ही बोले, तो करते एक हैं और होते दूसरे हैं। अंदर एक मीठा, ऊपर से बहुत मीठा बोलते, अंदर में कई अनेक भावनाएं होती। कई बार होता है कि इनको मैं गड्ढे में डालूँ, इनका करियर बर्बाद करूँ, लेकिन ऊपर से कहेंगे आपको तो बहुत आगे बढ़ना है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे, तो इस तरह की वो भावना होती है। लेकिन हर मनुष्य
खौफनाक होते हैं
लेकिन हर मनुष्य कितना भी किसी से छिपाए, वो स्वयं के आगे और परमात्मा के आगे प्रत्यक्ष होता है। बाबा कहता है मुरली में कि बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बहुत बड़ी टीवी लगी है, तो उसमें संकल्प, भावना, कर्म, बोल सारे ही चीजें एज इट इज स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। जैसे कैमराज लगे होते हैं, तो जहां पे कैमराज लगे होते हैं वहां लिखा होता है यू आर अंडर सर्विलियंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। इसका अर्थ है कि तुम जो भी काम करो ठीक से करो, क्योंकि आप कैमरा में आ रहे हो, नहीं तो आपकी हर बात पकड़ी जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हमारा भी मन एक दर्पण है, यहाँ हम शिव बाबा के सामने भी रहते। दिल्ली में भी हमने देखा है कि जो भी बस स्टॉप होते हैं वहाँ पे एक कैमरा का मतलब चित्र बना के रखा है, कैमरा नहीं है लेकिन वो चित्र है, तो वहाँ लिखा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, क्योंकि सब लोग ट्रैफिक के नियम बहुत तोड़ते, लेकिन वहाँ कोई भी ट्रैफिक के रूल्स नहीं है, सब ऐसे ही चलते हैं, तो वो सब देखता है। लेकिन इतना हमें अपनी वो चाहिए कि हमें कोई देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, हमको हम खुद जानते हैं और बाबा देखता है। ऐसे ही विश्वरतन दादा को एक बार पूछा था कि दादा आप पुरुषार्थ कैसे करते हैं या क्या करना है, तो बाबा हमेशा कहते थे उनके सामने जो टेबल होती थी कि यहाँ बाबा बैठा है, मेरे टेबल पे बाबा बैठा है, तो वो होता है कि मेरी कभी गलती हो ही नहीं सकती है, इतना बाबा को याद रखेंगे तो कभी गलती होगी नहीं। लेकिन इस सबसे मनुष्य डरता है क्योंकि अंदर एक बाहर एक है। तो हमें क्या करना है, ना इस पारदर्शी जीवन अगर बनाना है तो वहाँ न प्रदर्शन होना चाहिए न परदर्शन होना चाहिए, दोनों भी चीजें नहीं, दिखावा भी नहीं न दूसरों को देखना है। लेकिन हमारा पारदर्शी जीवन बनाने के पहले हम देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या प्रकार की धूल चढ़ी है। सबसे पहले नामंचान, दूसरा ईर्ष्या द्वेष घृणा, और तीसरा है उस दिन जैसे डिस्कस किया था आध्यात्मिक मोह, और प्रभाव प्रभावित करना, प्रभाव में आना, दोनों चीजें, और फिर पर चिंतन, परमत और प्रदर्शन, ये सब चीजें होती हैं। तो जैसे माना हम लोग ज्ञान में चलते हैं तो हमारे अंदर पांच विकार बड़े रूप में नहीं होते, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काम करते ही रहते हैं, वो हमें छोड़ते नहीं है जल्दी, क्योंकि माया भी चाहती है कि अगर मैं तो चली गई लेकिन मेरे बच्चों को क्यों छोड़ू, वो हमारे पास छोड़ देती है। इसे इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि क्रोध के 100 बच्चे हैं, उसका ईर्ष्या द्वेष घृणा, जैसे ही कल की मुरली में बाबा ने कहा आंख दिखाना, गर्म होना, डांटना, ये सब क्रोध के बच्चे हैं। हाँ, ये बाबा ने कहा कि इससे काम बनता नहीं और भी बिगड़ता है। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं हम अपना रोब दिखा है लोगों के ऊपर तो हमारा काम जल्दी बन जाता, लोग करते भी हैं बट अंडर फियर।
आपने कभी रोब दिखाया?
नहीं, रोब नहीं दिखाती, तो मेरे ऊपर ही सब दिखाते हैं। सॉफ्ट नहीं है, मेरा ही होता है, सॉफ्ट नेचर है तो सब मिस यूज करते।
वही तो आप क्या करते हो उसमें, चलो आपका सॉफ्ट नेचर है, सामने वाला मिस यूज करते तो आप क्या करते थे?
मैं बाद में संकल्प नहीं चलाती, मिस यूज मतलब उस हिसाब से अपने आप को, अगर मान लो ठीक है मुझे नहीं करना है कुछ और वो जबरदस्ती मुझे करना ही पड़ता है, मतलब पता है सीधी है तो फिर उसको चला दो, कैसे भी कुछ भी काम बताओ कुछ भी करो, तो मैं कर लेती हूँ लेकिन फिर उसके ऊपर ज्यादा संकल्प नहीं चलाती हूँ, अपने डिस्टर्ब नहीं होती। तो थोड़ा साक्षी होना पड़ेगा, ज्ञान का यूज करके सहन करना पड़ेगा दोनों चीजें,
बात होती
है। सहन करे बिना तो कुछ नहीं होता है, तभी शहंशाह बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे ईर्ष्या द्वेष घृणा। तो ईर्ष्या ब्राह्मण जीवन में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे है संगठन में रहते हैं, तो संगठन में क्या होता है कि हमारे साथी बहुत होते हैं और सबसे ज्यादा पेपर साथियों से होता है, और वो होता है ईर्ष्या का, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है मैं पीछे हूँ, उसको अच्छा कर रहे मुझे नहीं कर रहा। कई बार तो देखा है सेंटर पे हमारे पास बहुत सारी बातें आती है, तो देखते हैं कि बहनें जो होती है मतलब छोटों के साथ भी कंपैरिजन करती है और बड़ों के साथ भी कंपैरिजन करती है, तो ईर्ष्या जब होती है तो कंपैरिजन पहले करते हैं फिर कंपटीशन करते हैं।
भाई नहीं करते, केवल बहनें।
हमारे पास एग्जांपल बहनों के ज्यादा आते के, बाकी होता तो सब जगह है। तो पहले कंपेयर करते हैं बाद में कंपटीशन, क्योंकि सेंटर्स वगैरह बहुत खोलते हैं ना, इस एरिया में इसने खोला है तो मैं भी वहीं जाके खोलूं, फिर कंपटीशन करते हैं और फिर क्रिटिसाइज, उनको क्रिटिसाइज करना और सब जगह जाके उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना, नेगेटिव बातें बोलना, तो ये होता है ईर्ष्या के कारण ये सब होता है। और फिर नफरत, बाबा के बच्चों के बीच में तो शायद इतना नहीं होता है, फिर भी कई बार होता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा कड़ा कर्म बंधन होता है कि वो आत्मा सामने आते ही संकल्प एकदम नेगेटिव चल जाते हैं, उल्टा उल्टा सब होता है। मेरा होता था ऐसा, अभी नहीं होता है, अभी मैं ज्ञान यूज करती हूँ, यूज यूज कर। तो ऐसे कार्मिक अकाउंट भी होते हैं। फिर है आध्यात्मिक मोह। उस दिन हमने बहुत अच्छी यहाँ पे चर्चा की थी कि आध्यात्मिक मोह क्या है। यहाँ पे तो बाबा जैसे कहता है ना कि लोहे की जंजीरें तो छोड़ के आ गए, परंतु यहाँ सोने की महीन धागों में, जंजीरों में बंध जाते तो उससे हम बाहर निकलना हमें बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे। और फिर लगाव। लगाव केवल व्यक्ति के साथ नहीं, लेकिन अपने रूप के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ लगाव। ये लगाव के कारण हम समझते हैं कि हमारा जो भी है उसको सबने अप्रिसिएट करना चाहिए, हमको सब अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, तो उसी उलझन में रहते हैं। उससे लगाव कहें या मोह कहें? शुद्ध मोह नहीं है। तो अपने साथ भी लगाव होता है, लगाव के बहुत सारे स्वरूप है, उसमें से ये एक स्वरूप है। तो लगाव बाद में है प्रभावित होना और प्रभावित करना। एक तो है इम्प्रेस करना अपने मतलब पर्सनालिटी से या अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से, बोलचाल से दूसरों को इम्प्रेस करना। दूसरा है प्रभावित होना। जिनको ज्यादा क्या एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरों को प्रभावित करते हैं, और जिनका लो कॉन्फिडेंस होता है वो प्रभावित हो जाते हैं। किसी की भी अच्छी विशेषताएं कुछ भी है तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की धूल है। बाद में बाबा ने एक खास मुरली चलाई थी 25 नवंबर 95 की। उसमें बाबा ने परमत, पर चिंतन और पर दर्शन के बारे में वो मुरली थी। बाबा ने कहा कि परमत, पर दर्शन, परमत, पर चिंतन और पर दर्शन छोड़ परोपकारी बनो। तो परमत के बारे में बाबा ने कहा कि जब कोई भी बात, आप संगठन में होते, कोई भी बात आती है, मानो किसी भी आत्मा के लिए कोई भी बात आती है तो उसे सुनना पड़ता है। कई बार आप बड़े हैं तो बड़ों को सुनना पड़ता है, या कभी बड़े भी छोटों को बताते भी ऐसा ऐसा है। तो वो बाबा ने कहा कि इसे सिर्फ सुनना है, और जहाँ जितना आवश्यक है उतना ही उस बात को देख के उस आगे उस अनुसार उस आत्मा के साथ थोड़ा एक्ट में आना है। लेकिन उस आत्मा के प्रति हमारी वो रिजेक्शन की या घृणा की भावना नहीं हो कि ये आत्मा ऐसी है, सिर्फ सावधानी से उसके साथ चलना है। लेकिन होता क्या है कि हम उसमें और भी इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा भी करना है, ऐसा भी होता है, नहीं नहीं ये ऐसा ही है, तो वो इसी बातों में चले जाते हैं। फिर और भी बातों को, फिर इसी बातों में इंटरेस्ट रहता है तो सब इसी प्रकार की बातें हमें मिलती है। जैसे किसी को ज्ञान योग में इंटरेस्ट है उसको उसी प्रकार के लोग मिलते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस तरह की बातों में, व्यर्थ बातों में, नेगेटिव बातों में अगर इंटरेस्ट है तो उसी प्रकार के लोग मिलेंगे, वही बातें आपके सामने आएगी। तो बाबा ने कहा क्या क्या आप कूड़े का डिब्बा हो जो आपके पास आके सब कचरा डाल के जाए? तो हमें कूड़े का डब्बा नहीं बनना है। और फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि परचिंतन। परचिंतन क्या होता है? एक कूड़ा तो हमारे पास आ गया, फिर हम वो कूड़े को सब जगह फैलाते, पता है ये ऐसा है, पता है ये ऐसा है, इससे ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो ऐसा फैलाते फैलाते वो एक बात जो है वो जो 10 लोगों के पास जाएगी तो उसकी सत्यता ही बदल जाती है। जो वास्तविक बात होती है वो होती ही नहीं, या यूं कहें कि बात का बतंगड़ बन जाता है। कुछ भी बात इतनी सी बात होगी उसकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो जब तक बाबा ने कहा कि जब तक 10 लोगों के पास बोल के नहीं आते तब तक समाधान नहीं होता है, पर चिंतन करते हैं तो। और फिर प्रदर्शन अर्थात दूसरों को, दूसरों के दोष को देखना, दूसरे कितना मतलब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सारा दिन उसी में लगे रहना, तो तीसरा है प्रदर्शन। तो ये सब प्रकार की धूल हम आत्माओं पे चढ़ी है। अभी इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पांच मिनट करती हूँ। और तो सबसे पहले हमें चेकिंग करना है, चेकिंग अपनी बहुत महीनता से चेकिंग करनी है, वो भी ज्ञान के आधार पर चेकिंग करनी है। फिर दूसरा है चेकिंग के बाद रियलाइजेशन, चेकिंग तो किया लेकिन रियलाइजेशन, बाबा ने एक बार कहा है कि बच्चे जानते तो है कि ये ऐसा ऐसा है लेकिन अलबेले हो जाते हैं। जैसे दुर्योधन की भी बात है कि दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूँ सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है, वो और इन दूसरी गलत बातें क्या है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूं, ईश्वर का साथ लूं। तो ऐसे होता है, या कई बार ऐसे होता है कि हम लोग जानते हैं, अभी ब्राह्मण जीवन में तो ये बहुत होता है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं अमृत वेले नहीं उठ पाती, मैं जानती हूँ नहीं उठ पाते, लेकिन अलबेले बाबा बोलता है कि अलबेलापन आ जाता है तो आप उठ नहीं पाते हैं, आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो जानते हुए भी नहीं करते। इसलिए रियलाइजेशन करना है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं को चेंज करना, परिवर्तन करना, और परिवर्तन के लिए दृढ़ता चाहिए। ज्ञान तो है ही हमारे पास लेकिन दृढ़ता की शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। फिर है हमारा निर्दोष दृष्टि, सभी आत्माओं में कुछ ना कुछ दोष होता ही है क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, तो हमारी उनके प्रति निर्दोष दृष्टि, जैसे दादी जी का था निर्मल स्वभाव निमित भाव और निर्मल वाणी निमित भाव और निर्माण चित, तो अगर निर्दोष दृष्टि होगी तो हम निर्माण भी बनेंगे, हमारा निमित भाव भी आएगा और निर्मल स्वभाव भी बनेगा। दो लास्ट में दो एग्जांपल देके पूरा करती हूँ कि किसी ने भगवान से पूछा कि शुभ प्रभात क्या है, तो भगवान ने उसे कहा कि जिस दिन तुम अपने बुराइयों को समाप्त करके अपने आत्मा को शुद्ध करके जीवन की दिन की शुरुआत करोगे वही शुभ प्रभात है। और सेकेंड एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था कि वाई डोंट यू, किसी विदेशी ने पूछा था वाई डोंट यू वियर टेलर क्लोथ टू लुक लाइक अ जेंटलमैन, तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि इन योर कल्चर टेलर मेक्स यू जेंटलमैन एंड इन अवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। ओम शांति।
हम नहीं दिखाना चाहते, मतलब डर है किसी को पता चलता है अंदर जो घाव है।
अगली बार बताना था।